नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द रेड ट्रेसर चैलेंज। जेम्स बक की प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर केंद्रित व्यावहारिक पुस्तक है। इसका लक्ष्य तैयार लाइब्रेरी के सहारे चित्र बनाना नहीं, बल्कि शून्य से अपना रे ट्रेसर बनवाते हुए त्रि आयामी रेंडरिंग की कार्यप्रणाली समझाना है। रे ट्रेसिंग में कैमरे से दृश्य की ओर किरणें भेजी जाती हैं, वस्तुओं से उनके प्रतिच्छेद निकाले जाते हैं और प्रकाश के नियमों के आधार पर पिक्सल का रंग तय होता है। पुस्तक की विशिष्टता इसका टेस्ट ड्रिवन ढांचा है। हर नई क्षमता को छोटे स्पष्ट परीक्षणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें लागू करते हुए पाठक धीरे धीरे एक कार्यशील रेंडरर तैयार करता है। सामग्री भाषा निरपेक्ष है, इसलिए पाठक अपनी पसंद की प्रोग्रामिंग भाषा और डिजाइन शैली चुन सकता है। पुस्तक गणित, ज्यामिति, प्रकाश व्यवस्था, सतह सामग्री और दृश्य संरचना को एक ही निर्मित होते प्रोजेक्ट में जोड़ती है। इसका उद्देश्य केवल सुंदर छवियां बनाना नहीं, बल्कि ग्राफिक समस्याओं को छोटे सत्यापनीय हिस्सों में विभाजित करने की इंजीनियरिंग आदत विकसित करना भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, परीक्षणों से जटिल रेंडरर का क्रमिक निर्माण। पुस्तक का केंद्रीय शिक्षण तंत्र टेस्ट ड्रिवन विकास है। पाठक को पहले विशाल रेंडरिंग इंजन की रूपरेखा बनाकर फिर उसमें दोष खोजने के लिए नहीं कहा जाता। इसके बजाय प्रत्येक क्षमता के लिए व्यवहार आधारित परीक्षण दिए जाते हैं, जो सामान्यतः गैरकिन शैली में लिखे हैं। उदाहरण के लिए, पहले किसी बिंदु और वेक्टर के संचालन का अपेक्षित परिणाम तय होता है, फिर किरण और गोले के प्रतिच्छेद का, और उसके बाद उस प्रतिच्छेद से रंग निकालने का। यह कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद के दृश्य प्रभाव पहले बने छोटे गणितीय घटकों की विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। परीक्षण केवल उत्तर जांचने का माध्यम नहीं है, वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी प्रकार फंक्शन या वस्तु की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। जब परावर्तन, पारदर्शिता या कई आकृतियों वाला दृश्य जोड़ा जाता है, तब आरंभिक परीक्षण पुराने व्यवहार को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। पुस्तक छद्म कोड और अवधारणात्मक व्याख्या भी देती है, इसलिए पाठक को केवल रहस्यमय अपेक्षाएं नहीं मिलती, इसकी सीमा भी स्पष्ट है। भाषा निरपेक्ष होने के कारण डेटा संरचना, मॉड्यूल व्यवस्था और परीक्षण ढांचे के व्यावहारिक निर्णय पाठक को स्वयं लेने पड़ते हैं, लेकिन यही निर्णय इसे नई भाषा में कौशल अभ्यास के लिए उपयोगी बनाता है। यह पद्धति रेंडरिंग को एक बड़ी गणितीय छलांग के बजाय सत्यापित छोटे निर्माणों की श्रृंखला में बदल देती है। दूसरा, ट्यूपल। वेक्टर और रूपांतरणों से स्थानिक गणित की नींव, रे ट्रेसर के लिए दृश्य को संख्याओं में व्यक्त करना आवश्यक है, और पुस्तक इसकी शुरुआत ट्यूपल, बिंदु, वेक्टर और रंग से करती है। बिंदु स्थान दर्शाता है, जबकि वेक्टर दिशा और दूरी का परिवर्तन दर्शाता है। इन दोनों का अंतर समझे बिना कैमरे की किरण, सतह का नॉर्मल, प्रकाश की दिशा और वस्तु की गति जैसे विचार अस्पष्ट रहेंगे। पुस्तक जोड़, घटाव, स्केलिंग, परिमाण, सामान्यीकरण, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जैसे संचालन को रेंडरिंग की जरूरत से जोड़ती है। मसलन, सामान्यीकृत वेक्टर प्रकाश के कोण और सतह पर रोशनी की तीव्रता निकालने में काम आता है। मैट्रिक्स आधारित रूपांतरण अगला निर्णायक कदम है। स्थानांतरण, स्केलिंग, घुमाव और शेयरिंग से एक ही मूल आकृति को दृश्य में अलग आकार, दिशा और स्थान दिया जा सकता है। इन रूपांतरणों को सही क्रम में संयोजित करना भी जरूरी है, क्योंकि क्रम बदलने पर परिणाम बदलता है। पुस्तक इन्हें केवल अमूर्त रैखिक बीजगणित के रूप में नहीं रखती, बल्कि आकृति और किरण को उनके स्थानीय निर्देशांक तंत्र में बदलने की व्यावहारिक समस्या से जोड़ती है। यह आधार आगे गोले, तल, घन, बेलन और त्रिभुज जैसी आकृतियों के लिए साझा ढांचा बनाता है। पाठक को यह भी समझ आता है कि ग्राफिक्स में अनेक कठिन दिखने वाले प्रभाव अंततः निर्देशांक, दिशा और रूपांतरण के सटीक प्रबंधन से उत्पन्न होते हैं। तीसरा, किरण प्रतिच्छेद और छायांकन से पिक्सेल का रंग निर्धारण। रे ट्रेसिंग का मूल प्रश्न है कि कैमरे से किसी पिक्सेल के लिए भेजी गई किरण दृश्य में सबसे पहले किस वस्तु से टकराती है। पुस्तक किरण को उद्गम और दिशा के रूप में परिभाषित कर पहले गोले के साथ प्रतिच्छेद का गणित विकसित करती है। किसी किरण के कई प्रतिच्छेद हो सकते हैं, लेकिन दृश्य में दिखाई देने वाला परिणाम सामान्यतः कैमरे के आगे स्थित सबसे निकट वैध प्रतिच्छेद से तय होता है। यह चयन साधारण दिखता है, पर ऋणात्मक दूरी वस्तुओं के भीतर से गुजरती किरणों और बाद में पारदर्शी सतहों के लिए सावधानी मांगता है। प्रतिच्छेद मिलने के बाद सतह का नॉर्मल निकाला जाता है। नॉर्मल और प्रकाश दिशा का संबंध बताता है कि सतह कितनी रोशन होगी। पुस्तक परिवेशी, विस्तृत और चमकीले घटकों पर आधारित प्रकाश मॉडल के माध्यम से सामग्री का रंग, प्रकाश की स्थिति, देखने की दिशा और सतह की दिशा को मिलाती है। यही चरण सपाट रंग के गोले को आकार और गहराई का आभास देता है। छाया के लिए सतह से प्रकाश तक एक अतिरिक्त किरण भेजी जाती है। यदि बीच में कोई वस्तु मिले तो प्रत्यक्ष प्रकाश घट जाता है। सतह से बहुत निकट प्रारंभ होने वाली इस किरण के लिए छोटा विस्थापन जरूरी है, ताकि संख्यात्मक अशुद्धि सतह को स्वयं ही छाया में न डाल दे। इस तरह पुस्तक ज्यामिति, प्रकाश और फ्लूटिंग पॉइंट सावधानियों को एक प्रत्यक्ष दृश्य परिणाम में जोड़ती है। चौथा, परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश की पुनरावृत्ति यात्राएं। मूल छायांकन के बाद पुस्तक उन प्रभावों तक पहुंचती है जो रे ट्रेसिंग को साधारण प्रत्यक्ष प्रकाश गणना से अलग बनाते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण का एक भाग प्रतिबिंबित दिशा में लौटता है। उस दिशा में नई किरण भेजकर प्राप्त रंग को सतह की परावर्तकता के अनुपात में मूल रंग में जोड़ा जाता है। पारदर्शी पदार्थों के लिए किरण सतह से गुजरते हुए मुड़ती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। यहां प्रवेश और निकास माध्यम के अपवर्तनांक, सतह की दिशा तथा किरण के कोण से नई दिशा निकलती है। पुस्तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी स्थिति का भी महत्व दिखाती है, जहां अपवर्तित किरण संभव नहीं होती। परावर्तन और अपवर्तन दोनों नई किरणें उत्पन्न करते हैं, इसलिए दो दर्पणों जैसी स्थितियों में गणना अनंत हो सकती है। इसका व्यावहारिक समाधान पुनरावृत्ति की अधिकतम गहराई तय करना है। यह सीमा केवल प्रदर्शन अनुकूलन नहीं बल्कि रेंडरर के नियंत्रण प्रवाह का आवश्यक भाग है। जब सतह एक साथ परावर्तक और पारदर्शी हो, तब दोनों योगदानों का संतुलन जरूरी होता है। इसके लिए कोण के आधार पर परावर्तन की मात्रा का अनुमान उपयोगी बनता है। यह अध्याय बताता है कि यथार्थवाद अधिक विशेष नियम जोड़ने से नहीं आता, बल्कि प्रकाश की प्रत्येक नई यात्रा को नियंत्रित, सीमित और सही संदर्भ में संयोजित करने से आता है। अंत में आकृति विस्तार, पैटर्न और जटिल दृश्यों का प्रदर्शन प्रबंधन, पुस्तक का दायरा गोले और एकल प्रकाश स्रोत तक सीमित नहीं रहता। आगे यह घन, बेलन, शंकु और त्रिभुज जैसी आकृतियों के प्रतिच्छेद तथा नॉर्मल गणना की ओर बढ़ती है। अलग आकृतियों के लिए अलग गणित होने पर भी रूपांतरण, सामग्री और सामान्य आकृति व्यवहार साझा किया जा सकता है। समूहों और पदानुक्रम के माध्यम से अनेक वस्तुओं को एक साथ रूपांतरित करना संभव होता है, जो दृश्य संगठन को बेहतर बनाता है। पैटर्न और टेक्सचर मैपिंग रंग को केवल एक स्थिर सामग्री गुण न मानकर स्थान के फलन के रूप में देखती है। धारियां चेक पैटर्न या छवि आधारित टेक्सचर वस्तु के स्थानीय निर्देशांकों से जुड़ते हैं, इसलिए वस्तु और पैटर्न के रूपांतरणों का सही तालमेल जरूरी है। यह भाग दिखाता है कि टेक्सचर की त्रुटि कई बार छवि में नहीं, निर्देशांक रूपांतरण की श्रृंखला में होती है। जटिल मॉडल और बड़े दृश्य आने पर हर किरण को हर आकृति से जांचना महंगा पड़ता है। बाउंडिंग बॉक्स और बाउंडिंग वॉल्यूम हायरार्की जैसी तकनीकें पहले मोटे स्तर पर तय करती हैं कि किसी समूह की विस्तृत जांच आवश्यक भी है या नहीं। इस प्रकार पुस्तक सौंदर्यात्मक विस्तार और संगणकीय दक्षता को अलग विषय नहीं मानती। दोनों एक सक्षम रेंडरर के पूरक पक्ष हैं, जहां नई दृश्य क्षमता को सही अमूर्तन और लागत नियंत्रण के साथ लागू करना पड़ता है। निष्कर्ष में, द रे ट्रेसर चैलेंज उन प्रोग्रामरों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स को केवल किसी इंजन या API के उपयोग से नहीं, उसके मूल निर्माण के स्तर पर समझना चाहते हैं। यह विशेष रूप से उन पाठकों के काम की है जिन्हें नई प्रोग्रामिंग भाषा में एक गंभीर अभ्यास प्रोजेक्ट चाहिए, या जो गणितीय अवधारणाओं को ठोस दृश्य परिणामों से जोड़कर सीखना पसंद करते हैं। पाठक को रैखिक बीजगणित, ज्यामिति, प्रकाश मॉडल, पुनरावृत्ति डिजाइन और परीक्षण की संयुक्त समझ मिलती है। हालांकि यह शुरुआती प्रोग्रामिंग पुस्तक नहीं है, पाठक को अपने भाषा परिवेश में डेटा प्रकार, परीक्षण ढांचा, छवि आउटपुट और प्रोग्राम संरचना के निर्णय स्वयं लेने होंगे। तैयार स्रोत कोड के बजाय छद्म कोड और परीक्षण मिलने से सीखने की जिम्मेदारी भी पाठक पर रहती है, यही इसका प्रमुख अंतर है। अनेक रेंडरिंग पुस्तकें सिद्धांत, एल्गोरिदम या किसी खास ग्राफिक्स इंटरफेस पर केंद्रित होती है। बक की पुस्तक एक पूर्ण क्रमिक और सत्यापनीय निर्माण अनुभव देती है, जिसमें हर सिद्धांत तुरंत रेंडरर की किसी क्षमता में बदलता है। इसकी भाषा निरपेक्षता भी इसे दीर्घकालिक बनाती है, क्योंकि पाठक अवधारणाओं को किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र से नहीं बांधता। आधुनिक उत्पादन रेंडरों के सभी उन्नत विषयों का यह विश्वकोश नहीं है, लेकिन आधारभूत रे ट्रेसिंग को समझने और एक विश्वसनीय छोटा रेंडरर बनाने के लिए इसका अभ्यास केंद्रित ढांचा असाधारण रूप से स्पष्ट है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेम्स बक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।